श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री श्री गौर निताई की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री बरसाना धाम की, श्री नंदगाम धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री गिरिराज गोवर्धन की, श्री यमुना मई की, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस 3 फरवरी के इतवार के दिन 2019 के बरसाना आईकैम के तीसरे सत्र में आप सबका स्वागत है। थर्ड सेशन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बरसाना धाम। हरि बोल, जय हो। ये बहुत ही भाग्य की बात है कि हम लोग बरसाना में हैं। इसको समझना भी थोड़ा कठिन है, लेकिन समझने का हम प्रयास करेंगे कि हमारा कैसा भाग्य है। ये कितना दुर्लभ घटना है कि हम सब बरसाने में हैं, क्योंकि करोड़ों करोड़ों यात्रियों में से कुछ लोग बरसाने मथुरा से वापस चले जाते हैं जन्मस्थान दर्शन करके। उसमें से कुछ लोग फिर वृंदावन में आते हैं, बांके बिहारी और बहुत सारा पुराने मंदिर दर्शन करके चले जाते हैं। कुछ लोग जमुना जी तक पहुंचते हैं, लेकिन उसके आगे के जितने स्थान हैं ना, वो बहुत लोग जानते नहीं हैं। और उसमें से जिनको श्रद्धा है और इन रहस्य की पता है, रहस्य के बारे में जानू पता है उनको, वो लोग इतने अंदर तक पहुँचते हैं, क्योंकि ये मथुरा से 50 किलोमीटर अंदर है। और वैसे यात्रियों को आकर्षित करने के लिए बहुत सारी सुविधा यहाँ पर नहीं है। बड़े बड़े होटल्स और अच्छे अच्छे सुख सुविधाएँ, सब जगह गर्म पानी है ऐसा नहीं है, छोटे छोटे कमरे हैं, वेल मेंटेन भी नहीं है। तो यात्रियों को कुछ खींचने के लिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है जितना वृंदावन मथुरा में है। यहाँ पर वही आएगा जो राधा रानी के महिमा को जानता है। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं कि बहुत कम, लेकिन बहुत संख्या में परसेंटेज में बहुत कम लोग हैं। तो उनमें से कहते हैं कि 9 करोड़ लोग आजकल बरसाने में दर्शन के लिए आते हैं। साल में 9 करोड़ लोग श्री जी के दर्शन करते हैं, फेस्टिवल में आते हैं, होली में आते हैं, राधाष्टमी में आते हैं, हरियाली तीज में आते हैं, बहुत सारे उत्सव में आते हैं, फिर तो भागवत कथा में आते हैं और दर्शन करते हैं, कथा सुनते हैं और चले जाते हैं। लेकिन उन 9 करोड़ लोगों में से बहुत ही कम, शायद कुछ ही हजार ऐसे लोग होंगे जो बाहर से आ रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ सेवा प्राप्त है। दर्शनार्थी बहुत है, श्रद्धालु भी बहुत है, लेकिन बहुत कम भाग्यवान लोगों को यहाँ पर कुछ सेवा मिलती है। बाकी यहाँ पर जन्मे हुए लोग तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लाखों में हैं, लेकिन वो यही रहते हैं, उनका जन्म ही यही है, उनका सांस राधा रानी है, उनकी धड़कन राधा रानी है, उनका जीवन राधा रानी है, प्राण राधा रानी है, लेकिन उनसे हम तुलना नहीं कर सकते। तो राधा रानी के विशेष जीव हैं, तो अनंत जन्मों तक पुण्य करते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं, उनके योग्यता को देखते हुए राधा रानी उनको अपने धाम में जन्म देती है। वो तो विशेष जीव है, वो तो राधा रानी के गोद में हैं, उनका सब क्षेम कुशल वही देखती है। लेकिन हम बाहर से आते हैं और हमारे लिए ये बहुत अप्रूप यानी बहुत दुर्लभ चीज़ है। तो इसलिए इस भाग्य को समझना भी बहुत जरूरी है कि हम उनमें उन भाग्यवान लोगों में से हैं जो उनको बाहर से आते हुए भी यहाँ पर सेवा प्राप्त है। कुछ दिन का निवास कर रहे हैं हम लोग, कुछ दिन का ब्रजवास कर रहे हैं, फिर भी इसमें हमको प्रत्यक्ष राधा रानी को प्रसन्न करने वाली एक सेवा उपलब्ध है। लेकिन हो सकता है कि अगर हम पूरा इसका महात्म्य नहीं जानते हैं तो हाथ में आया हुआ सुनहरा मौका जो है वो गंवा सकते हैं, उसका पूरा लाभ हम शायद ले नहीं पाएंगे। इसलिए आज मैं थोड़ा प्रयास करूंगा इस धाम का महात्म्य बताने का, ताकि हम लोग अभी आज का आपका फर्स्ट डे है तो आपकी एक भूमिका तैयार हो जाए, मन की, बुद्धि की, आत्मा की, भावनाओं की एक ऐसी भूमिका तैयार हो जाए जो आपको अगले 7 दिन में पूरी तरह से अपने काम में, सेवा में, हर स्तर पर पूर्ण लाभ उठाने में सक्षम बनाए, टू मेक अस एलिजिबल टू डिराइव द फुल बेनिफिट ऑफ स्टेइंग हियर फॉर 7 डेज, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली ऑल्सो। तो पूरे पृथ्वी पर भगवान को भारतवर्ष बहुत प्रिय है और 14 लोकों में से भगवान को पृथ्वी बहुत प्रिय है, क्योंकि पृथ्वी लोक ही एक ऐसा लोक है जिसमें मनुष्य जीवन प्राप्त करके आप भगवान की प्राप्ति बड़ी आसानी से कर सकते हो। देवता लोक में देवता बनकर भी भगवान की प्राप्ति इतनी आसानी से नहीं हो सकती है, बल्कि आसानी की बात नहीं, मुश्किल ही होती है बहुत। देवता लोक में बहुत सारे भोग हैं, वहाँ पर भगवान की प्राप्ति करना बहुत मुश्किल है। पृथ्वी पर मनुष्य जीवन प्राप्त करके बहुत सारे दुख प्राप्त होते हैं और बहुत थोड़ा सुख है, इसलिए आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए अनुकूल वातावरण है। आप बोलेंगे कैसा उल्टी बात करें प्रभु जी, आप कोई सुखी नहीं है तो भौतिक प्रगति नहीं है, भौतिक आनंद नहीं है तो कैसे प्रगति करेंगे? जब भौतिक दुनिया में कष्ट पाएंगे तो भगवान को याद करेंगे। इसलिए देवताओं से भी मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि भगवान की भक्ति करने के चांसेस ज्यादा मनुष्य जीवन में है, देवताओं के जीवन में नहीं है। तो वो पूरे पृथ्वी लोक में मनुष्य जीवन का बहुत महात्म्य है, वो पूरे पृथ्वी लोक में भगवान भारतवर्ष को बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं भारतवर्ष को, बहुत कृपा है उनकी भारतवर्ष पर, क्योंकि भारतवर्ष पर ही उनके सारे अवतार अवतरित हुए हैं। कोई भगवान का ऐसा अवतार है क्या आप जानते हो जो इंग्लैंड में, अमेरिका में हुआ है, कहीं मेक्सिको में हुआ है, स्विट्जरलैंड में हुआ है, ऐसा कोई है? बताइए हमको, हम उसका पढ़ना चाहेंगे, अगर होगा तो बताइए। लेकिन नहीं है, मुझे पता है, जितने भी अवतार होने थे वो सब भारतवर्ष में हुए, जितने भी संतों को आना था, जितनी भाषा बोलने वाले, धर्म के, जाति के, अलग अलग विविध प्रकार के, विविध रंगों के, जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं, संत हुए हैं, वो सब भारतवर्ष में हुए हैं। केवल 2 मैसेंजर विदेश में आए थे, बाकी करोड़ों में संख्या में जो है हर एक राज्य में, हर एक भाषा में बोलने वाले संत भारत, जैसे आम आदमी की तरह भारत में संत हैं। आप सोचो, सोचते जाओ, एक महाराष्ट्र में गिनेंगे तो कितने सैकड़ों संत मिलेंगे आपको, वो भी जो जिनके प्रसिद्ध हो गए, जिनकी जानकारी हो गई वो है, वो जो अप्रसिद्ध है, जिनके कोई किसी को पता नहीं है, वो गुप्त रूप में भजन करते हैं, ऐसे तो क्या कहें। भारतवर्ष जो है ना, एक संतों का खजाना है पूरा। जब भी कोई भौतिक उदासी होती है लोग भारतवर्ष की ओर देखते हैं, फॉर होप, आशा के लिए, आशा का किरण जो है भारतवर्ष में, इसमें हमें भारतवर्ष का गौरव करना चाहिए, हमारे मन में गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। देश के भक्ति के प्रति नहीं कह रहा हूं मैं, इस भूमि में भगवान के सारे भक्तों के चरण लगे हुए हैं, उनके चरण रज इस भूमि में है, और भगवान के सारे अवतारों के चरण भी इस भूमि में लगे हुए हैं। ये भूमि पावन है, इसकी रज पावन है, जिसके स्पर्श मात्र से ही हम धन्य हो जाते हैं, और इसलिए भारत भूमि में जन्म मिलने पर हमारे कर्तव्य बढ़ते हैं, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। केवल भारतीय भारतीय बोलने से कुछ नहीं होता है, भारतीय होने का मतलब है, आपको लगेगा कि बहुत अलग डेफिनेशन कर रहे हैं आप, भारतीय होने का मतलब है आध्यात्मिक होना, फ्रॉम द कोर, जड़ से स्पिरिचुअल होना, और जीवन के उद्देश्य को स्पिरिचुअल रखना, ये भारतीय होने का मूल, क्या कहते हैं वो, स्थाई भाव है, कॉन्स्टिट्यूशन। ये कोई फैशन नहीं है, ओ मैं भी श्रद्धालु हूँ, मैं भी भगवान को विश्वास करता हूँ, अभी आजकल एक फैड हो गया है, कैसे जस्ट एज अ फैड, एज अ हॉबी आई एम डिवोटी, यू नो। लेकिन स्थाई भाव का मतलब क्या है, मूलभूत कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, अगर भारतीय हम हैं तो वो भक्त होने में है। मैंने एक भारत की डेफिनेशन सुनी थी, भारत, भा का शब्द अर्थ होता है राधा कृष्ण का प्रेम, राधा कृष्ण के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति, और रथ का मतलब है जो देश में सब लोग राधा कृष्ण की भक्ति में रत रहते हैं, मग्न रहते हैं, वो भारत देश है। और एक भारत की व्याख्या सुनी थी कि जहां पर गाय निर्भय होकर विहार करती है, निर्भय होना भी नेगेटिव थिंकिंग है, मतलब एक नकारात्मक विचार है, वो उनको भय नहीं है, लेकिन है क्या फिर उनको, उनको आनंद है, सुख है, प्रेम है, हर प्रकार का कल्याण है उनका, गाय का, उस भूमि को भारत भूमि कहते हैं। तो वो डेफिनेशन से पूरा भारत वर्ष, जिसमें अफगानिस्तान भी इंक्लूड था, बांग्लादेश भी इंक्लूड था, इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, ये सब इंक्लूड था उस समय, अभी उसको हम ग्रेटर इंडिया कह सकते हैं, जैसे ग्रेटर बॉम्बे कहते हैं ना, बृहन मुंबई, ऐसे बृहन भारत कह सकते हैं। वो सभी जगह पर, क्या कह रहा था मैं बताइए, गौ माता निर्भय होकर आनंद से विहार करती थी। आज हमको ढूंढना पड़ेगा ऐसा कोई एरिया है जहां पर गाय निर्भय होकर विहार कर रही है, सब जगह उसको भय है मृत्यु का। तो ऐसे भारतवर्ष में भी भगवान को चार धाम बहुत पसंद है, जगन्नाथपुरी, श्रीरंगम, द्वारका और बद्रीनाथ केदारनाथ। बद्रीनाथ वहां का जो, बाय द वे आपको बताना इंटरेस्टिंग है कि ऊपर जो कहते हैं ना चार धाम चार धाम चार धाम, उसमें केवल एक ही धाम है बाय द वे, वो बद्रीनाथ है। दो नदियों का उगम है और एक तीर्थ है केदारनाथ, लेकिन धाम केवल बद्रीनाथ है। चार धाम मतलब ये बद्री, जगन्नाथपुरी, श्रीरंगम और द्वारका, लेकिन चारों में भगवान भगवान बनकर आते हैं, अपने ऐश्वर्य के साथ में आते हैं। एक जगह तप का ऐश्वर्य लेके साथ में आते हैं, एक जगह भोजन और विरह का ऐश्वर्य लेके आते हैं, एक जगह निद्रा लेने के लिए आते हैं, एक जगह राजनीति का ऐश्वर्य लेके आते हैं, अरे एक्सपर्ट कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में आते हैं, लेकिन भगवान के ही रूप में आते हैं, भगवान करके सलाम करते हैं उनको। लेकिन जब भगवान अपना भगवान का पद भूल कर आना चाहते हैं तो वो केवल वृंदावन में आते हैं। इसलिए सभी जगहों पर भगवान का वृंदावन धाम बहुत प्रिय है, क्योंकि वृंदावन में भगवान अपने भगवान का पद, वो टोपी उतार के आ सकते हैं, एक सामान्य व्यक्ति बनकर आ सकते हैं, नंगे पैर घूम सकते हैं, वनमाला पहन सकते हैं, किसी का मित्र बनकर आ सकते हैं, किसी का पुत्र बनकर आ सकते हैं, किसी का सखा बनकर आ सकते हैं, किसी का प्रियकर बनकर आ सकते हैं। ऐसा जो सहूलियत है ना, फ्रीडम, वो केवल वृंदावन में है। इसलिए भगवान वृंदावन को बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि सब जगह पर अपना वो सबका नमस्कार स्वीकार करना, पूजा स्वीकार करना, सबका गौरव स्वीकार करना, श्लोक सुनना, वेदों की ऋचाएँ सुनना, ये कभी कभी उससे भी दिल उबक जाता है। कोई सामान्य आदान प्रदान भी लगता है होना चाहिए, दोस्ती का आदान प्रदान, थोड़ा मजाक, हंसी मजाक, थोड़ा गुल्ली डंडा खेलना, थोड़ा मक्खन चोरी करना, थोड़ा सा आनंद लेना चाहिए ना, वो दृष्टि से उनको वृंदावन बड़ा पसंद है। और पूरे वृंदावन में भगवान कभी शस्त्र नहीं उठाते, बाकी सब जगह पर गदा, कौमुदकी गदा, गदा उनका नाम गदा का, कौमुदकी गदा वो उठाते, कभी ब्रह्मास्त्र को अश्वत्थामा के गर्भ में, अश्वत्थामा को बचाने के लिए, ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए उन्होंने कौमुदकी गदा का उपयोग किया था। शारंग धनुष है उनका, शारंग पाणी नाम है उनका, शारंग धनुष को लेते हैं। पांचों जन्य शंख है उनका, धनुष बाण है, गदा है, लेकिन वो सब वृंदावन के बाहर उपयोग करते हैं उसका, वृंदावन में केवल मुरली धारण करते हैं, कोई शस्त्र अस्त्र नहीं। इतने भयंकर राक्षसों का वध किया उन्होंने, लेकिन कोई शस्त्र अस्त्र भी उपयोग नहीं किया उन्होंने, ये वृंदावन की विशेषता है। क्योंकि पिछले युगों में जब वो एकदम होल सेल में वध कर रहे थे राक्षसों का, तब सीता देवी ने कहा कि आप कितने कितने क्रूर हो आप एक धनुष लगाते हो तो उसमें उसमें 100,000 बाण एक साथ बन जाते हैं मंत्रों से, और हजारों एक साथ मर जाते हैं, थोड़ा सा रहम क्या करो। तो कहे ठीक है, मैं अगली बार आऊँगा तो कोई शस्त्र लेकर नहीं आऊँगा। तो वृंदावन में जब आए ना तो बिना शस्त्र के सबका वध किया उन्होंने। तो फिर राधा रानी ने कहा कि अभी भी वध ही कर रहे हो आप, शस्त्र तो लेके नहीं आए हो, किसी को मुक्का मार रहे हो, किसी को लात मार रहे हो, किसी को घुमा रहे हो, किसी को मोटा होके, बड़ा होके, गर्म होके नष्ट कर रहे हो वही काम कर रहे हो, शस्त्र लेके नहीं आए, थोड़ा थोड़ा तो दया करो। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी अगले अवतार में ऐसे आऊंगा कि ना शस्त्र लूंगा, ना अस्त्र लूंगा, ना किसी का वध करूंगा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बंद कराएंगे नेक्स्ट अवतार में। तो गौरांग महाप्रभु की, वहां पर किसी राक्षस का वध नहीं किया, राक्षस की राक्षसी प्रवृत्ति का वध किया, लेकिन वृंदावन में उन्होंने शस्त्र धारण नहीं किया। पूरे ब्रह्मांड में जितने देवता हैं, जितने ऋषि हैं, जितने मुनि हैं, जितने अपने आप को भक्त समझते हैं, जितने भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, वो सारे लोग वृंदावन में आकर भगवान की चरण रज लेना चाहते हैं, क्योंकि भगवान की चरण रज वैकुंठ में भी अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं अवेलेबल? वहां तो रहते ना वो, बताइए क्यों अवेलेबल नहीं है? हाँ नहीं नहीं, हाँ वहां पर एक तो मखमल बना बिछा के रखा है, सब जगह पर ऐसे ही मखमली वातावरण है, रज है उधर उसके नीचे कारपेट के नीचे, जैसे यहां पर भी कारपेट के नीचे, और जब चलने का समय आता है तो फिर वो रत्न से भरजरित पादत्राण पहन के चलते, और वो भी रथ आता है या पालकी आती है, कहाँ रखेंगे पांव, पांव रखने का स्कोप ही नहीं इधर। तो वैकुंठ में भी वो रज उपलब्ध नहीं है, वैकुंठ होने पर भी जहां पर नंगे पैर घूमने का निर्णय लेते हैं वहीं पर होगा ना स्पर्श जमीन को, तब जाके रज बनेगी ना। तो वो ये भूमि है जहां पर उन्होंने चप्पल पहनने के लिए भी मना कर दिया है। लंबी लंबी कहानियां शास्त्रों में, कई कहानियां उनकी कि कितनी बार कहा गया उनको पहनो पहनो, उन्होंने ना ही नहीं कहा है उनको। इस एक तरह से वो इस भूमि को, वृंदावन की भूमि को अपने चरणों का स्पर्श देकर नवजीवन चैतन्य प्रदान कर रहे हैं, लाइफ दे रहे हैं इस भूमि को, इस भूमि का जीवन ही उनके चरण कमल का स्पर्श है। सब जगह पर जहां पर भी विहार करते हैं नग्न पैरों से चलते हैं, लेकिन जैसे आपका घर है ना उसके अंदर हो सकता है, अभी तो सबके घर में वन बेडरूम ही होता है या तो नो बेडरूम भी होता है, क्या करें, लेकिन पुराने जमाने में घर हुआ करते थे, हाउस, अपार्टमेंट नहीं, घर हुआ करता था। उसमें आंगन होता था, आंगन के बाद में वो ओसरी मतलब बाहर बैठने की जगह होती थी, उसके बाद दीवान खाना होता था, उसके बाद में फिर किचन होता था, उसके बाद में फिर अंतर कक्ष यानी बेडरूम्स होते थे, फिर तिजोरी एक कमरे में, फिर देवघर अंदर के कमरे में, ऐसे होता था। तो उस घर में कैसे होता है, कोई आएगा ना, मुझे पोस्टमैन आया तो उसको बाहर बाहर से आप थोड़ा जल देंगे, वहाँ से पेपर पोस्ट लेंगे और भेज देंगे, कोई कुरियर आया तो उधर से उसको विदा कर देंगे, दूध वाला आया भंगी या कोई धोबी आया तो उधर से उसका काम करके उसको भेज देंगे, और कोई ऑफिशियल कोई एलआईसी का एजेंट आया तो उसको अंदर बिठाएंगे हॉल में, थोड़ा साइन करेंगे, उसको वहीं से भेज देंगे। लेकिन आपके अंतर कक्ष में कौन जाएगा, जैसे आपको कोई विशेष मित्र और या मैत्रीण हो, वो आपके अंतर कक्ष में जाएगा, वहाँ बैठेगा, आप उसको अपने अलग अलग गुप्त चीज़ें दिखाएंगे जो किसी को नहीं दिखाएंगे। वैसे अगर वृंदावन पूरा धाम अगर घर है किसी का तो बरसाना अंतर कक्ष है, इसमें सब लोग अंदर नहीं आ सकते, जो विशेष लोग हैं उन्हीं को यहाँ पर प्रवेश होता है, बाकी लोग आएंगे मत्था टेक के जाएंगे वैसे ही जैसे वो दीवान खाने में आकर चले जाएंगे, लेकिन अंदर जो आएंगे वो राधा रानी के विशेष होंगे तो ही अंदर आ सकते हैं, और आप उनमें से सब लोग हो, तो इसलिए लाइटली मत लेना इसको कि चलो आए हैं घूमेंगे, ठंड भी अच्छी है मुंबई में, देखने को मिलती नहीं, अनुभव करेंगे जरा धुंध क्या होता है, ठंड क्या होती है देखेंगे, 10-15 कपड़े पहन के बाद कैसा लगता है इसका भी अनुभव करेंगे। वहाँ पर एक कपड़ा पहनने के बाद भी मुंबई में बहुत तकलीफ होती है, कभी उतारूँ ऐसा लगता है, दिन में 3-3 बार बदली करते हैं, यहाँ पर 10-10 कपड़े पहनते हैं फिर भी बदली नहीं करने का दिल होता नहीं है। तो ये बरसाना धाम है, ये राधा रानी कृष्ण का अंतर कक्ष है, इतना अंतर कक्ष है कि वृंदावन में भी राक्षस लोगों ने प्रवेश किया है, देवताओं को प्रवेश नहीं है वहां पर, लेकिन राक्षस लोग आ जाते हैं, कैसा विरोधाभास है देखो, हाउ व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट इज दिस, देवताओं को प्रवेश नहीं है, उनको भी कैसे है ना, अरे अगर वो कार्तिकेय आ गए ना तो इनको अपने मोर को वृंदावन के बाहर पार्किंग करना पड़ता है, और कोई देवता आएगा ना अपने अपने वाहन, तो वाहन वृंदावन के बाहर पार करके जूता वहां उतार के अपनी पालकी रथ भी जो भी है वहां रख के नंगे पैर अंदर आना पड़ता है। जो काम करना है वो काम करके तुरंत, रात के स्टे का इंतजाम नहीं है यहाँ पर देवताओं के लिए। नाइट स्टे नॉट पॉसिबल, ऑल रूम्स बुक्ड नॉट अवेलेबल, जाना पड़ता है वहां पर उनको। लेकिन राक्षस लोग आते हैं, उनकी एक विशेष सेवा है इसलिए आते हैं वो। क्या सेवा है उनकी? अरे भगवान के गौलोक धाम के अंदर राक्षस नहीं होते हैं, अगर भगवान को लड़ने की इच्छा होती है तो लड़ने के लिए कोई सही मिलता नहीं आदमी, सब भक्ति भक्त हैं। मारा मारी भी करते तो फ्रेंडशिप में ही करते हैं, कोई उसमें ऐसा कुछ ये नहीं है, रियल ऐसा दुश्मनी वैर बदला लूंगा ऐसा कुछ है नहीं उधर, जो भी है फ्रेंडशिप में ही है। जैसे ये पिताजी भी अपने बेटी के साथ में या बेटा के साथ में कुश्ती खेलता है और पिताजी हार भी जाता है उसमें, होता है ना ऐसे, हम लोग हार जाते हैं, तय करके हार जाते हैं, लेकिन उसमें वो रियल फाइट का जो वीर रस का अनुभव नहीं होता है। इसलिए भगवान पृथ्वी पर आते हैं, अपने वीर रस का भी उनको अनुभव करना है। तो उनमें से ही कुछ गिने चुने भक्त होते हैं, उनको कुछ शाप वाप दिलाते हैं और राक्षस बन के नीचे आते हैं उनके ही वहां। सुधा श्रीदामा ने कुछ वहां पर गड़बड़ किया, बोला तुम शंखचूड़ राक्षस बन जाओगे, तो राक्षस बन के आया। और वो अरिष्टासुर ये सब लोग ऐसे ही थे, उन्होंने भगवान ने उनको ऐसा लीला करके आशाप दिलवाया और उनको यहाँ पर लाके राक्षस बनवाया, खूंखार दुश्मन बनाया और उनका बहुत ही सनसनीखेज तरीके से वध कर दिया, ताकि हम लोग आजीवन पढ़ते रहे उसको, कभी आपको बोर नहीं होगा, ऐसे सुंदर तरीके से उनको वध किया उन्होंने। रोचक कहते हैं ना उसको, रोचक वर्णन किया उसका, जिस प्रकार से वर्णन दिया है। राक्षस लोग आते हैं लेकिन बरसाने के अंदर राक्षस लोगों को प्रवेश नहीं है। कभी पढ़ा है क्या आपने किसी ने कि नंदगांव बरसाना जावट के एरिया में राक्षस आया? हाँ पढ़ा है हमने, एक ही बार आया था, एक ही व्यक्ति केवल एक ही बार आया था, दोबारा नहीं आया वो। और वो कौन था? स्वयं कंस था वो, क्योंकि वो लोग यहाँ गोकुल से निकले ना, वहां पर निकल गए, वहां से नंद बाबा ने डिस्कस किया अपने भाइयों के साथ कि यहाँ पर बहुत डेंजरस है, अभी यहाँ पर दिन रात राक्षस आते हैं, जमुना पार करके शरद कंस की तरफ से आ जाते हैं, अभी यहाँ रहना बहुत असुरक्षित हो गया है, अभी हमारे बालकों के लिए बहुत ही खतरनाक जगह हुई है, हमको जाना चाहिए वापस, जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य सफल हो गया है, अभी चलना चाहिए हमको। तो चले गए वो, तो जिस दिन चले गए उसके पहले दिन राक्षस आया था, उसका वध हुआ था, जिस दिन चले गए उस दिन भी आया, लेकिन देखा कि पूरा सिटी खाली हो गया, इधर वापस लौट के गए वो। महाराज को बताया, महाराज कोई है ही नहीं उधर, कहाँ गए? तो महाराज खुद निकले और ढूंढते 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 इधर आ गए, जैसे ही बरसाना की सीमा में प्रवेश किया ना, कन्या बन गए वो। महाराजा जराज कंस दिग्विजयी सम्राट चक्रवर्ती सम्राट जो है राजा के भेष में आए थे, बड़े लाल लाल आंखें लेकर आए थे, लेकिन बरसाना की सीमा में प्रवेश करते ही वो महाराज के कपड़े के अंदर जो शरीर था वो स्त्री हो गया, तो कितना संकोच हो गया उनको। कहते 6 महीने तक गोपियों ने उनके हाथ से कंडे लिपवाए, बड़े एकदम सिस्टमैटिक एसओपी था उनका, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो सब सिखाया उनसे, सारा कंडे लिपवाए सुखवाए टोकरी में भरवाए अच्छी तरह स्टोर करवाए, 6 महीने तक गोबर निकलवाया उनसे, गोबर गौशाला साफ करवाई, सब कुछ करवाया जो गोपी करती है, लेकिन गोपियां घोड़े खुशी से और आनंद से करती है, ये लोग रोते रोते करते रहे, कितना दुर्भाग्य है ना। सब लोग गोपी बनने का प्रयास करते हैं, गोपी बन जाए भगवान की सेविका बन जाए, कितनी परमोच्च स्थिति है, वो अपने ऐसे ही टाइम पास में पास हो गई मालूम, मतलब प्राप्त हो गई थी उसको, लेकिन चेतना उसकी भावना तो रॉन्ग जगह पर थी ना, रॉन्गली सिचुएटेड, इसके लिए इतना परम भाग्य मिलने पर भी उसका लाभ नहीं ले सका वो। तो इस कंस की चेतना पर आपको विचार करना चाहिए, कंस बरसाने में अंतर कक्ष में आ गया था, जो किसी को मिलता नहीं अधिकतर उसको मिल गया था अंदर आने का भाग्य, उसको गोपी बनने का भाग्य भी मिला बिना तपस्या का। देखो बाकी सब जीव जो है अनंत जन्मों तक तपस्या करते तब जाकर उनको गोपी पद प्राप्त होता है, तब जाकर भगवान की सखी बन सकते हैं, वो इतना आसान नहीं है, वो उसको भी एकदम आसानी से मिल गया था। इतना सारा भाग्य होने पर भी उसकी झोली में क्या कहते हैं इसको, खाली झोली थी उसकी, कुछ नहीं मिला उसको, कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ जो मिलना चाहिए था, क्या फर्क था उसके अंदर। उसने भी कंडे लिपवाए, उसमें गाय को धोया, उसमें दुहन किया, दूध निकाला, दही बनाया, कंडे जमा किए, सब कुछ किया उसने जो गोपियां रोज करती हैं, करवाया उनसे, लेकिन रोते 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 अपने दुर्भाग्य को, तथाकथित दुर्भाग्य को कोसते हुए किया उसने। तो हम लोग भी आ गए हैं बरसाने में, लेकिन हमारी चेतना अगर विपरीत होगी तो कंस के जैसी अवस्था हो जाएगी हमें। सब कुछ प्राप्त होने पर भी झोली खाली हो सकता है ना, या आपके ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर डिपेंड है कि झोली में कितना भरना है और कैसे भरना है, ये पता होना चाहिए। तो कंस फिर 6 महीने के बाद भी सुधरा नहीं, रोता ही रहा कि क्या मुसीबत आ गई मेरे जीवन में, ना घर जाना मुमकिन है क्योंकि घर जाके महाराजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट कन्या को कौन स्वीकार करेगा, और यहाँ पर इतनी संकोच है कि यहाँ पर गोपियां मुझे कंडे लिपवा रही है, ऐसा काम करवा रही है जो मुझे करना नहीं चाहिए, दोनों तरफ से परेशानी थी उसको, इतना संकोच में था वो। फाइनली राधा रानी ने कृपा किया, बोली कि ये कुंड मेरा किशोरी कुंड है, जावट में था अभी भी है, स्नान करो इसमें से फिर पुरुष बनोगे, दोबारा आओगे तो परमानेंट कन्या बना दूंगी, ऐसे बताया। तो कहते हैं वहां से जो भागा गीले कपड़ों में वापस पुरुष बनने के बाद, सीधे मथुरा तक भागा, मुड़के भी देखा नहीं, यदा कदाचित उसका भाव बदल गया, डिसीजन चेंज हो गया, तो इसलिए वो सीधे भागा वहां से। और वार्निंग भी दिया, तुम्हारा कोई आदमी भी यहां पर आना नहीं चाहिए, कोई नहीं आया। उसके पहले 2 जन आए, 4 जन आए थे, वो पत्थर बन गए शांडिल्य मुनि के शाप के अनुसार, उसके बाद में कोई नहीं आया, क्या कारण है उसका? ये भी लीला है, राक्षसों को आने से रोकने के लिए ये भी एक लीला है भगवान की, एक योजना है, एक सिस्टम है उनकी, क्यों उनको इच्छा है कि यहां पर कोई आना नहीं चाहिए डिस्टर्ब करने के लिए। गौचारण में चलता है उनको, गौचारण कर रहे हैं, गौ को घुमा रहे हैं इधर उधर, राक्षस आ गया उसको पीटा उन्होंने, फिर नदी में स्नान किया, खाना खाया, फिर घर पे लौट के आए, चलता है उनको। लेकिन बरसाना नंदगांव एरिया में उनको राक्षस नहीं चाहिए, कारण यहाँ पर बहुत ही अंतरंग लीलाओं का भगवान संपन्न करते हैं उनको, जो भगवान की बहुत ही हृदय की लीलाएं हैं, प्रेम की लीलाएं हैं, जो जनता के सामने प्रकट नहीं कर सकते, मारा मारी जनता के सामने कर सकते हैं, वध कर सकते हैं पब्लिक के सामने, लेकिन प्रेम की लीलाएं गुप्त होती है ना, वो कि किसी का पति पत्नी का प्रेम जो है वो पब्लिक में नहीं होता है, वो अपने घर पे ही होता है, जनता में आके प्रकट नहीं करते हम कितना प्रेम करते हैं, वो प्राइवेट बात है, वो हर एक की अपनी अपनी प्राइवेट बात है। उस तरह की जो अंतरंग और गुप्त और वैयक्तिक व्यक्तिगत लीला जो है वो यहाँ संपन्न करते हो, और ऐसी ऐसी लीला है अगर आप सुनेंगे तो पता चलेगा हाँ इसके बीच में राक्षस नहीं आ सकता, लीलाएं समाप्त हो जाएगी, वो लीलाएं भंग हो जाएगी, और इतनी उत्कट लीला के बीच में राक्षस का क्या किसी का व्यवधान नहीं आ सकता, केवल प्रेमी जनों का ही सहभाग हो सकता है, ऐसी है भूमि। एक बात हो गई, दूसरी बात यह है कि सारे वृंदावन धाम में सब जगह पर श्री कृष्ण की चरण धूलि लोग चाहते हैं, संत भी हो और जितने भी ब्रजवासी हैं, देवता हैं, सब लोग, लेकिन जिनकी चरण रज पूरे ब्रज में और पूरे संसार में कहीं भी देखो लोग चाहते हैं, वो व्यक्ति स्वयं भी किसी की चरण रज प्राप्त करने के लिए बसाने में आता है, वही परम भगवान, परात्पर भगवान, परम ब्रह्म, गौलोकेश्वर श्री कृष्ण भगवान, सृष्टि के निर्माणकर्ता, सृष्टि के नियंता, सृष्टि को नष्ट करने वाले, निर्माण करने वाले, जिनके इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, वो व्यक्ति राधा रानी के चरणों की धूल प्राप्त करने के लिए स्वयं बरसाने में आते हैं। पूरी दुनिया उनका नाम जपते हैं, उनको प्रसन्न करने का, उनको प्राप्त करने का, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, और वही भगवान खुद को कृपा प्राप्त करवाने के लिए राधा रानी के दरबार में आते हैं और यहाँ के चरण रज अपने माथे पर लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रेम भूमि है, यहाँ पर केवल प्रेम प्रकट होता है, और वैकुंठ का ऐश्वर्य त्याग करके यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान इस प्रेम के भिखारी बनकर आते हैं, प्रेम के भिक्षुक बनकर आते हैं। कोई यहाँ पर है वो अपना ताज पहनकर नहीं आते हैं कि मैं पृथ्वी का निर्माण करता हूँ, मैं ब्रह्मांडों का निर्माण करता हूँ, सारी सृष्टि का निर्माण करता हूँ, हर पत्ता मेरे इशारे से हिलता है, वो भाव लेके नहीं आते, एक दास बनकर आते हैं, एक सेवक बनकर आते हैं, एक प्रेमी बनकर आते हैं, एक भिक्षुक बनकर आते हैं, सारे पदों को सारे अधिकारों को छोड़कर आते हैं, एक सामान्य व्यक्ति बनकर राधा रानी के चरणों में गिर जाते हैं और कृपा की याचना करते हैं, वो भूमि है ये। तो हमें कितना सतर्क रहना चाहिए। अगर हमारे भगवान जिनको हम जो हमारे आराध्य हैं वो अगर यहाँ पर लोट पोट होने को तैयार है, राधा रानी के इशारे पर नाचने को तैयार है, जिनको बताए उन पर कृपा करने को तैयार है, इन पर करो इन पर करो इन पर करो, जो भी इशारा करेगी उन पर कृपा करने को तैयार है, वो भगवान अगर ऐसा कार्य यहाँ करते हैं तो हमको कितना सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे आराध्य परमेश्वर हैं, वो हमारे लक्ष्य हैं जीवन के। और इस जगह पर मैंने पहले ही कहा कि वो लोग जन्म लेते हैं जो राधा रानी के बड़े प्रिय होते हैं, और इस कैंप के माध्यम से बरसाने में उन प्रियजनों की सेवा होती है, क्योंकि हम राधा रानी के बहुत दूर है, अभी कृष्ण भगवान के बहुत दूर है, वो तो केवल मूर्ति में, चित्रपट में, शास्त्र में, ग्रंथ में, कथा में हम सुनते हैं उनके बारे में, प्रत्यक्ष हमारा कोई उनका आदान प्रदान नहीं है, अभी इतनी योग्यता ही नहीं है, इतने सारे काम विकार, क्रोध विकार, कितने सारे विकार मन में पड़े हुए हैं, इतना अहंकार है हमारे मन में, इतनी सारी घमंड है, तो बहुत दूर की चीज़ है, अभी मंदिर बहुत दूर है अभी, लेकिन उनके भक्त हमारे आंखों के सामने हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, या तो जो उनकी सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं वो हमारे सामने हैं, उनकी सेवा हम कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं, और उनकी प्रसन्नता में उनकी प्रसन्नता छुपी हुई है, क्योंकि हमेशा हम लोग जिस पर हम प्रेम करते हैं उनको कोई रिझाता है तो हम उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे वो हमें ना रिझाएं। अगर मैं आपके घर पे आया, आपके बालक को खुश कर दिया, तो आपको मैंने बात भी नहीं की, आपसे तारीफ भी नहीं की, आपसे कुछ भेंट भी नहीं दिया, कुछ स्माइल भी नहीं दिया, फिर भी आप प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपके बालकों पर बहुत प्रेम किया है, उनको प्रसन्न करवा दिया है। उसी तरह से राधा रानी के भक्तों को अगर आप प्रसन्नता देते हो, उनकी जरूरत की जगह पर उनकी सेवा करते हो, तो राधा रानी और कृष्ण भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। वो सुविधा यहाँ पर है हमारे लिए, इसलिए यहाँ पर हमको जितने क्षण मिलेंगे, जितने मिनट मिलेंगे, जितने घंटे मिलेंगे, जितने दिन मिलेंगे, बहुत कम है वो। अभी हम चर्चा कर रहे थे, अभी आके 2 हफ्ते हो गए हमको इधर, अभी 1 ही हफ्ता बाकी है, जब आए थे तब 3 हफ्ते हैं, 23 दिन हम लोग यहाँ रहेंगे, लेकिन अभी उसमें से 15-17 दिन चले गए, अभी केवल अभी 1 हफ्ता बाकी है, और वो भी चले जाएंगे, 1 दिन बम्बई में रहेंगे, वहाँ पर सेवा करेंगे। तो ये बहुत ही दुर्लभ स्थिति है हमारी, दुर्लभ समय है हमारे लिए, भाग्य का समय है, जो गुरु और प्रभुपाद जी और राधा श्याम सुंदर जी की परम कृपा से प्राप्त हुआ है, उनकी योजना में हम लोग केवल सहभाग दे रहे हैं, हम लोग कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, उनकी कृपा के योजना में हम लोग केवल एक मेंबर हैं, सदस्य हैं उनके। तो ये जो भाग्य है जो कंस को मिला था, कंस ने गवाया, कैसे? गलत धारणा से, गलत भावना से, गलत दृष्टि से, वो कहीं हम भी ना खो जाएं। आवाज आ रहा है ना उसका? नहीं, बाहर नहीं, इधर से ही, थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर सकते हैं। तो वो कैसे हम बचना चाहते हैं उससे और पूरा लाभ देना चाहते हैं, तो ये भाव हमको जमाना जरूरी है कि हम लोग यहाँ पर पिकनिक के लिए नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पर सेवा करने आए हैं। जैसे अर्जुन को पूछा गया था ना, तुमको क्या दिखाई पड़ रहा है, तो अर्जुन ने कहा मुझे पक्षी के बाएं आंख की पुतली दिखाई पड़ रही है, ये भी नहीं कहा कि पक्षी की बाई आंख दिखाई पड़ रही है, जो निशाना था उसी के बारे में वो सोच रहा था, वही दिखाई पड़ रहा था उसको, ना पक्षी दिख रहा है ऐसा बोला, ना पक्षी की आंख दिख रही है ऐसा बोला, जो लक्ष्य था वही दिखता है ऐसा बोला अर्जुन ने। और हमारे लिए बहुत ये उपदेशात्मक घटना है कि जिस चीज के लिए हम आते हैं उस पर हमारा पूरा केंद्र, क्या कहते हैं उसको, ध्यान पूरा केंद्रित होना चाहिए उस चीज पर, और यहाँ पर हम आए हैं सेवा के लिए। और पिकनिक कब बन जाएगी, जब हम हमारे मन में कोई और हेतु होंगे कि चलो भाई बहुत पवित्र स्थान भी यहाँ पर है, वो दर्शन भी हो जाएगा। हाँ, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा किसका, पहले बैच में जैसे आप आज आए ना, वैसे पहले बैच में कुछ लोग आए, और जैसे आपको ओवर मिला, आज ओवर मिला कि नहीं, ओवर आपको वार्ड में ओवर मिला होगा, ओटी में मिला होगा, ओपीडी में मिला होगा, और कहीं किचन में भी हैंड ओवर हो गया, तो वो हैंड ओवर जो दे रहे थे, जो कॉमन लोग हैं यहाँ पर, जो शुरू से एंड तक यहाँ रहते हैं और हर बैच का देखते हैं आदान प्रदान ठीक से हो रहा है ना, क्योंकि सेवा का सातत्य जो है ना, कंटिन्यूटी, वो ठीक से होना चाहिए, उसका वो देखते हैं कि हो रहा है, तो वो ओरिएंटेशन दे ही रहे थे, तब कुछ लोगों ने कहा माता जी ठीक है अभी हमको ना परिक्रमा करने जाना है, हम जा रहे हैं अभी, हम तो वो ओरिएंटेशन कर ही नहीं पाई क्योंकि सब लोगों को परिक्रमा करना था। अभी आप बताइए इसमें क्या गड़बड़ है, गड़बड़ है कि नहीं है पहले बताइए। हाँ, हमारे मन में हमारे सेवा के उद्देश्य के अलावा और कोई अन्यथा उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ऐसा भी कर लेंगे, वहां पर वे भी कर लेंगे। एक ही हेतु होना चाहिए, सेवा। और सेवा करते हुए असुविधा होगी क्योंकि हम पराई जगह पर है, हमारे घर पे थोड़ी है, हमारे घर का बाथरूम यहाँ पर नहीं है, घर का बेडरूम यहाँ पर नहीं है, घर की गद्दी यहाँ पर नहीं है, घर का ब्लैंकेट यहाँ पर नहीं है, सब कुछ दूसरी जगह का है। असुविधा हो सकती है, हमारी उम्मीद से अधिक ठंड हो सकती है या उम्मीद से अधिक गर्मी भी हो सकती है, हमारी उम्मीद से भोजन कम मिल सकता है, ज़्यादा मिल सकता है, या तो पसंद का नहीं मिल सकता है, हो सकता है। एक टाइप का प्रसाद बनेगा, आप साउथ इंडियन होंगे तो आप बोलेंगे क्या ये पराठा कौन खाएगा रोज़ रोज़, इडली क्यों नहीं, ऐसा लगेगा। तो नॉर्थ इंडियन बोलेंगे क्या पराठा नहीं, कुछ नहीं, पनीर नहीं, केवल इडली डोसा ही खिला रहे हैं। ऐसे ही नॉर्थ वाले बोलेंगे क्या चावल खिला रहे हैं, साउथ वाले बोलेंगे क्या रोटी खिला रहे हैं, ये सब कुछ हो सकता है। क्योंकि मैंने केवल एक ही दिखा था एक बार, कि एक गल्फ कंट्री के राजा के घर पे 27 देशों का खाना एक साथ बनता था, 27 देश के कुकिंग टीम का पूरा सेट, 27 सेट उनके पास थे, 27 किचन, 27 कंट्री के कुक्स वहां पर रहते थे और राजा के लिए बनाते थे। और 27 टाइप का भोजन बनाने के बाद में राजा एक पपीता का टुकड़ा खा के जाता था निकल के, दिस इज द फैक्ट। वो तो राजा है इसलिए उसको 27 टाइप्स के कुक्स और किचन रखने की संभावना उसके लिए है, ये तो बरसाना कैंप का किचन है ना, हो सकता है एक टाइप का भोजन बनेगा और आपको पसंद नहीं आएगा, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अभी हम पहले दिन कैंप शुरू किया, धूमधड़ाके से यज्ञ किया, बहुत आनंद आया सब में, और रात हुई तो धुआंधार वर्षा हो गई, इतनी धुआंधार वर्षा हो गई, ये तंबू लगाया ना ये पूरा गद्दियाँ पूरे भीग गए, तंबू निकाल देना पड़ा, आइन मौके पे इमरजेंसी में यहाँ से वहाँ भागना पड़ा, सब कुछ वहाँ शिफ्ट करना पड़ा, इतनी ठंड बढ़ गई। अभी कोई प्लान तो था क्या ऐसा होगा तो हम उसके लिए करेंगे, तो वो अनगिनत चीज़ें हैं जो कभी प्लान में नहीं थी हमारे, वो तो इमरजेंसी हो गई ना, आपात स्थिति हो गई। लेकिन उसमें भी लोगों ने तुरंत अपना अलग अलग उपाय करके सब कुछ शिफ्ट करके सेवा को बरकरार रखा, कोई सेवा को बाधा नहीं आने दिया। तो इस प्रकार की घटनाएं होती है। अभी आज आप लोग ट्रेन से आ रहे थे, आपको पता था क्या हमारी ट्रेन लेट होगी, धुंध होगी तो लेट पहुंचेंगे, लेट ब्रेकफास्ट मिलेगा, लेट पहुंचेंगे, क्या होगा। लेकिन फिर भी आप अच्छी तरह से आके इंडोर लेके आप हो इधर बैठे हुए, तो उस चीज़ में खराब क्या चीज़ है, दर्शन करना कुछ पाप नहीं है। लेकिन जब सेवा प्रधान होती है ना तो दर्शन भी दुय्यम हो जाता है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, सेवा मिली सब कुछ मिला। हमारे प्रभुपाद जी है ना, हमारे हरे कृष्ण संस्था के संस्थापक आचार्य, उनके गुरु महाराज थे कृष्ण कृपाश्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, वो कहते थे कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, क्योंकि देखने का प्रयास करने पर भी आपको देखेंगे नहीं शायद, वो यश की कोई गारंटी नहीं उसके अंदर, आप करते रहो प्रयास अपना, अच्छी बात है, कोई खराब चीज़ नहीं है, फिल्म देखने के बदले में उनको देखने का प्रयास करना अच्छा है। लेकिन अगर आपको गारंटी भगवान का दर्शन करना है, उससे भी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि भगवान आपका दर्शन करें, इम्पोर्टेंट है। जब मंदिर जाते हो कि आप ही उनको देखते हो, वो भी आपको देखते हैं, लेकिन आप हमको देख रहे हो ये बड़ा डिफिकल्ट बात है। लेकिन वो अगर आपको देखना चाहते हैं तो उनके लिए डिफिकल्ट है क्या, एक झटके में आपके सामने खड़े हो सकते हो अगर आपका दर्शन करने की उनको इच्छा है, और आपको उनका दर्शन करने की इच्छा है तो पता नहीं कितने जन्मों तक तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, हृदय शुद्ध करना पड़ेगा, पता नहीं उसके बाद में ध्रुव महाराज जैसे दर्शन मिलेगा, लेकिन वो सब इफ एंड बट की बातें हैं। लेकिन भगवान को आपका दर्शन करने की इच्छा होगी तो तत्क्षण वो आपका दर्शन कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, वो यही बात कहते थे कि ऐसा काम और ऐसी सेवा किया करो कि वो आपका दर्शन करना चाहेंगे। इस तरह से सेवा करो, इस तरह से कार्य करो, इस भाव से कार्य करो कि वो आपको देखने आएंगे, वो आसान होगा ना आपके लिए, इट्स नॉट डिफिकल्ट। वो बुद्धिमानी की बात भी है, चतुरता की बात भी है, उनका ध्यान आकर्षित करना है तो ऐसा कुछ करना होगा कि वो आपको देखने को आ जाए। और वो जो कार्य है वो सेवा का कार्य है। वहां तक भागने की भी आवश्यकता नहीं है, समय मिला तो जरूर जाना, मंगला में जाना, दर्शन करना, सब कुछ करना, लेकिन प्रधान कार्य सेवा है। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि अगर दर्शन करना है तो बेस्ट तरीका उसका क्या, उन्होंने बताया, मैं कभी भी भूल नहीं सकता उस बात को। उन्होंने कहा है कि पहले ब्रज धाम का आश्रय लो, यहाँ पर बरसाने का आश्रय लो, इस रज का आश्रय लो, इस धाम के निवासियों की पूरी सेवा करो, उनको प्रसन्न करो, उनका आशीर्वाद लो, उसके बाद आप धाम दर्शन कर ले जाओ। इसलिए हमारे सेवा के सेशन के एंड में यात्रा होती है, शुरुआत में नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि धाम को आप अच्छी तरह अप्रिशिएट कर सकते हो अगर आपने बहुत सारी कृपा बटोर ली है सेवा के माध्यम से। अगर आप सेवा करके इन ब्रजवासियों की प्रसन्नता और कृपा आशीर्वाद प्राप्त करते हो तो कृष्ण और राधारानी प्रसन्न हो जाते हैं, और वो पूंजी के साथ में जब आप दर्शन करने जाओगे तो हर जगह आपके दर्शन जो है लाभकारी होंगे, आपको अनुभूति से पूर्ण होंगे, साक्षात्कार से पूर्ण होंगे, कृपा से पूर्ण होंगे, आशीर्वाद के पूर्ण होंगे, और धाम से जो आपको अनुभूति मिलनी चाहिए वो आपको मिलेगी अगर आप इस रास्ते से जाएंगे। और वो सारी योजना इधर उपलब्ध है आपके लिए, जितनी भी बेस्ट हो सके उतनी सुविधाएं हमने बना के रखी है, लेकिन आपको आपके पूरे ट्रिप को पूरी तरह से लाभ लेना है तो आपको कंस वाली धारणा छोड़कर ये वाली धारणा को स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान क्या कहते हैं, अनन्यस चिंतयन्तु माम, जो एक ही चिंतन करता है मेरा और मेरी सेवा का, उसी का मैं हो जाता हूं, उसकी सारी जरूरतें पूरी करता हूं, उसके पास क्या कमियां हैं वो भी पूरी कर देता हूं, उसके पास क्या है वो भी संभाल कर रखता हूं। भगवान कितने दयालु हैं कि ऐसे हजारों करोड़ों लोगों में से हम लोगों को सेवा दे रहे हैं, यहां पर कुछ समय के लिए क्यों ना हो, लेकिन प्रत्यक्ष सेवा दे रहे, अपने प्रियजनों की सेवा दे रहे। इसलिए एक सुंदर ढांचे में आपको यहां रहना है और मन को यहां वहां भटकने नहीं देना है। वो क्या है ना, हमारे संत यहां पर रमेश बाबा जी महाराज, परम पूज्य, बड़े महान संत है, वो हमेशा कहते थे हमें, अरे बंबई से आ रहे हो ना, रजोगुण रजोगुण तमोगुण छोड़ के आया करो, सत्व को अपना के आया करो, मुंबई वाले सब भाव छोड़ के आ जाओ मुंबई में, मतलब वो वहां से जो पहनने का ढंग है, जो कहने का ढंग है, जो बोलने का ढंग है, जो सोचने का ढंग है, वो छोड़ के आओ वहां पर। और इंग्लिश में भी कहावत है, इफ यू गो टू रोम देन बिहेव लाइक रोमन्स, वहां जाके उनकी तरह रहना सीखो तो आपको थोड़ा आनंद आएगा। हम जाते नहीं वहां पर, हम यहीं पर आते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर यहां आए हो तो यहां के भाव को ग्रहण करने का प्रयास करो, ये भूमि का क्या भाव है, यहां पर कृष्ण का क्या भाव है, वो कैच करने का प्रयास करो, उसको पकड़ने का प्रयास करो। और रजोगुण तमोगुण साथ में लेके आएंगे ना तो वो नहीं पकड़ सकते आप, वो आपके पकड़ में, जैसे पहलवान को तेल लगा के अगर भेज दिया जाए तो पकड़ में आएगा क्या, वो हमेशा आप पकड़ेगे तो फिसल जाएगा वो अपने हाथ से। अच्छा तेल लगा के आएगा तो वो तेल लगा के कुश्ती करना अलाउड नहीं है बाय द वे, उनको तेल लगा के फिर मट्टी में लोड़ना पड़ता है, फिर वो रफ हो जाते हैं, फिर कुश्ती शुरू होती है। तो वैसे हम रजोगुण तमोगुण का तेल लगा के आएंगे तो यहां पर कैसे पकड़ेंगे उस भाव को। जिस जगह पे जाओगे ना उसका एसेंस को ग्रहण करने का प्रयास करो, क्या वो जगह वो स्थान आपको कहना चाहता है, क्या देना चाहता है आपको, उसको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए संतों का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है, क्योंकि संत लोग ही हमें वो सब फॉर्मूला बताते हैं कि कैसे उसको ग्रहण करना है। तो वो क्या कहते हैं कि कोई अन्य हेतु मन में मत रखो कि हमें यात्रा मिलेगी, हमें दर्शन मिलेगा, हम चुप चुप के शाम को गोवर्धन जाके आएंगे, उधर जाके दर्शन करके आएंगे, श्री जी में जाके आएंगे, तुरंत जाके चुप चुप के नंदगांव में आएंगे, उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन क्या होगा, यहां पर आपको पूरे समय सेवा के लिए चुस्त उत्साही रहना है। अगर आप यहां वहां घूम के जाके थक जाएंगे, अगले दिन सेवा के समय पे डूब झपकी लेंगे, बोले क्या हुआ, नहीं कल हमने रात को ना सेवा होने के बाद गोवर्धन की परिक्रमा किया, तो क्या होगा, उसके बाद एक दिन की रेस्ट जरूरी होती है 22 किलोमीटर चलने के बाद, तो वो करने के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, वो उसके लिए अलग समय पर आइए आप। पूरा प्लान बनाइए, बरसाने की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा, नंदगांव की परिक्रमा, बहुत सारा योजना बना सकते हैं, पूरा लाभ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सेवा करने के लिए आए हैं। और उस सेवा के बीच में अगर सहजता से दर्शन मिल रहा है तो जाइए, तो आपको लाभ होगा उसका। लेकिन सेवा के बीच में ये मोह होते हैं तो भी एक प्रकार की माया ही है। आप बोलेंगे क्या प्रभु जी आप बता रहे हो, वो तो बड़े वो माया है क्या? नहीं, सेवा के लिए आए हो तो वो माया है, दर्शन के लिए आए हो तो ठीक है। और ये सब कैसे करते हैं, संत लोग बताते हैं, गुरु जी बताते हैं कि यहां पर आकर जब भगवान के नाम का अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक हम जप करते हैं तो हमारी चेतना वो सेवा के द्वारा कृपा लेने के लिए योग्य बन जाती है। इसलिए बिना जप के यहां पर सेवा करना वो ऐसा ही है, क्या कहते हैं, एयर गन, आवाज आती है केवल, उसमें दारू नहीं रहती है, खाली आवाज आती है, डराने के लिए होती है वो, तो पंछी मरता नहीं उससे। तो वैसे गन नहीं चलाना है आपको, ऐसा नाम पुकारना है कि सुनने वाला भाग के आए आपका नाम सुनने के लिए, किसको पुकार रहे हैं। इसलिए वो बार बार संत कहते हैं कि भगवान का दर्शन करने का प्रयास मत करो, उनको आपका दर्शन करने के लिए आकर्षित करो। तो एक आकर्षित करने का तरीका है सेवा, दूसरा है उनका नाम। वो नाम को अगर पुकारेंगे हृदय से तो कहाँ भगवान कहते हैं मैं कहाँ पर हूँ, नारद मुनि पूछते हैं कहाँ पर हो आप भगवान, तो कहते हैं नाहम तिष्ठति वैकुंठे, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ, मैं योगियों के हृदय में निवास नहीं करता हूँ। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, जहाँ पर मेरे भक्त लोग गुणगान करते हैं, मुझे पुकारते हैं, मेरी सेवा करते हैं, वहीं पर मैं रहता हूँ। वो चाहे जगह गटर के बाजू में हो या महल में हो, जहाँ पर भी मेरे भक्त होकर एक भाव से मेरी सेवा करते हैं, मेरे भक्तों की सेवा करते हैं, मेरे नाम को पुकारते हैं, वहीं पर मैं होता हूँ। भगवान तो सब जगह बोल चुके हैं बार बार, बाकी उनके लोग भी बोल रहे हैं बार बार, एक जगह बने रहो, मन को एकाग्र रखो। तो शहर का रमो तमोगुण रजोगुण का मतलब क्या है, वहां जैसे पहनते हैं कपड़े हम, वैसे यहां नहीं पहनना है, यहां के जैसे कपड़े पहनने, बोलने का तरीका यहां के जैसे होना चाहिए, तो फिर आप बोल सकते कि हम लोग शहर का जो स्वभाव है छोड़ के आए। यहाँ के जैसे हमारा, आपको समझो, आपको वो पुराने ज़माने में हमारे बचपन में वो BBC, सिलोन, मुंबई अ, मुंबई ब, ऐसे रेडियो के स्टेशन हुआ करते थे, कभी कभी दो दो बैंड बदली करके हम लोग वो लगाते थे, सिलोन और ऑस्ट्रेलिया के मैच का कमेंट्री सुनते थे, तो कैसे होता था, फिर बीच में आवाज़ आती थी, बाद में फिर तो क्या करते हैं, ट्यूनिंग करो, ट्यूनिंग, सॉफ्ट ट्यूनिंग करो, पहले दो बैंड बदली करो, फिर कांटा उधर लेके आओ, फिर उसके बाद ऐसा एक होता है बॉल, वो ऐसे घुमाते रहो, ज़्यादा घूमता ही नहीं, वो धीरे 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 घूमता है, फाइन ट्यूनिंग कहते हैं उसको। जब आपका ट्यूनिंग परफेक्ट हो जाएगा तो आपको परफेक्ट ऑस्ट्रेलिया कमेंट्री आएगी टोनी कोजियर की आवाज़ से, अभी चला गया बेचारा वो। तो वो प्रिंसिपल क्या है, जब तक आपके रेडियो का ट्यूनिंग उस फ्रिक्वेंसी से नहीं होता है तब तक आपको वहाँ की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी। आप विविध भारती पर ट्यूनिंग करेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया की आवाज़ नहीं आएगी, और दो बैंड बदली करके ऑस्ट्रेलिया में ट्यूनिंग करेगा तो विविध भारती की आवाज़ नहीं आएगी। जहाँ पर आपका ट्यूनिंग है, मिलता जुलता चेतना है, तो वहाँ की आपको ध्वनि, चेतना, लहरें सब आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसी प्रकार से इस धाम की चेतना से आपका ट्यूनिंग नहीं हुआ तो ऐसा ही अस्पष्ट आवाज़ आती रहेगी और आपको पूरा लाभ नहीं हुआ उसका, खुद ही आप परेशान हो जाओगे। जैसे आप जो कमेंट्री होती है ना, वो जो ठीक चुनने की है तो बंद कर दे, बंद करो उसको भी, कुछ खाली यही आवाज आता है, कुछ सुना ही नहीं पड़ रहा है क्या चल रहा है वहाँ पर, बंद करो उसको, पेपर में पढ़ेंगे कल क्या हुआ मैच में। उसी तरह से हमें भी अवस्था हो जाएगी अगर हमारी चेतना प्रॉपरली ट्यून्ड नहीं है। यहाँ पर यहाँ के लोग इतने महान है, मैं आपको बताता हूँ, एक बार कैंप में हम लोग रात को राउंड लगाते हैं, बहुत बार मरीज ठीक है देखने के लिए रात को राउंड लगाते हैं, तो वार्ड में गए थे, सब अंधेरा था, लाइट डिम था बहुत, एक जगह लाइट थी नर्सिंग स्टेशन पे, और सब लोग कंबल ओढ़ के ठंड में ऑपरेशन के बाद सो रहे थे, तो उसमें राधे राधे ऐसी आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पर तो सब लोग राधे राधे ही बोलते हैं ना, राधे राधे पुकारते हैं, तो दर्द में भी राधे राधे बोलते हैं और खुशी में भी राधे राधे बोलते हैं, किसी को बुलाना तो राधे राधे बोलते हैं, हर चीज़ के लिए राधे राधे। हमारे कैसे हॉस्पिटल में हरी बोल है ना, किसी को बुलाना है तो हरी बोल, किसी को जाग बोलना है तो भी हरी बोल, कोई मर गया तो भी उसका हरी बोल हो गया, इस प्रकार के हरी बोल के कई अर्थ होते हैं, प्रसंग समय के अनुसार और कहने के अनुसार उसके अर्थ बदल जाते हैं। यहाँ पर भी राधे राधे दर्द में पुकारते हैं, खुशी में पुकारते हैं, गले मिलने पर राधे राधे बोलते हैं। तो हमको लगा कि रात के ऑपरेशन के बाद में दर्द होता रहेगा, शायद सर दर्द होता रहेगा, उल्टी होती रहेगी, कुछ परेशानी होगी, अस्वस्थता होगी, तो हमने पहले उनके वहाँ जाने के पहले नर्स को बुलाया, बोला आ जाओ देखते हैं क्या हो रहा है। तो जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ पर हम गए और उसकी हल्के से वो रजाई ऐसे ऊपर करी, तो बहुत गहरी नींद में थे और राधे राधे पुकार रहे थे। क्या लगा आपको सुनकर? इतने महान आत्मा है, गहरी नींद में भी मुख से राधा राधा रानी का नाम जप रहे हैं। और हम लोग 8 घंटा पूरी नींद निकालने के बाद जागृत अवस्था में जप करने बैठे तो सो जाते हैं, पूरी नींद होने के बाद भी। अभी भरपेट खाया नहीं, सुबह खाली पेट ही है, नींद पूरा हो चुका है, स्नान वान करके चकाचक फ्रेश हो गए हैं और माला लेके बैठते तो हरे कृष्णा सो जाते हैं। वो लोग नींद में भी उनको पुकार रहे हैं। बोलो कितनी गहराई में उनका चिंतन होगा भगवान के ऊपर। देखो नींद में कोई चीज की याद कब आती है? दिन भर जिसका चिंतन करते हो ना आप, मनी वसे ते स्वप्नी दिसे, जो दिन भर जिसका चिंतन कर रहे हो वही स्वप्न में हमको दिखाई पड़ता है। दिन भर किसी के जेब में आपने सोना देखा, हाँ तो भाई इसके जेब में सोना है, इनके गले में सोना है, और दिन में किसी को पर्वत को देखा, चाहे चोटियों को देखा, तो रात को आपको सोने का पर्वत स्वप्न में आएगा, सोना और पर्वत मिलके सोने का पर्वत दिखाई पड़ेगा। वो सब मन का चिंतन है, मन घड़ंत बातें हैं सब। और वही दिन भर आप अगर राधा और कृष्ण के सेवा में चिंतन में भाव में लगे रहेंगे तो आपको स्वप्न भी वही आएगा। जैसे मैं प्रभु जी को बता रहा था अभी, मैं आधा घंटे के लिए थोड़ा विश्राम किया, लेकिन मेरे मन में आज शाम को क्या बोलना है उसका एक थोड़ा सा चिंता नहीं कह सकते, लेकिन विचार चल रहा था क्या बोलूँ। तो मैं 30 मिनट सोया ना, तो नींद में भी प्रवचन ही दे रहा था क्योंकि क्या बोलना है वही मेरे मन में विचार चल रहा था। तो वही मैंने थोड़े दिन के थोड़े समय के सपने में भी वही आया मुझे। तो जो मन में चल रहा है वही आपको स्वप्न में आएगा। तो अगर आपके मन में दिन भर कृष्ण की सेवा है तो ही कृष्ण के विचार रात को भी आएंगे। इतने महान जीव है ये उनका रात में भरे नींद के बीच में कंबल के अंदर रजाई के अंदर राधे राधे पुकारना कोई साधारण घटना नहीं है। हम तो हृदय से ऐसे हिल गए देख के उसको उस समय, कि ऐसे भी लोग होते हैं, इनकी चरण धूली लेनी चाहिए, इनकी सेवा करना हमारा परम भाग्य है। ऐसे लोग यहाँ पर, ऐसा कोई ऑपरेशन थिएटर दुनिया में नहीं है हाँ, जिसमें ऑपरेशन करने के पहले ऑपरेशन जिसका होने वाला है वो डांस करते हैं। ये एक ही बरसाना हमने देखा है। हमारे मुंबई में भी 12 अस्पताल हैं, एक बहुत बड़ा अस्पताल है मदर हॉस्पिटल हाँ, जिसमें मतलब एक माँ की तरह है, बाकी सब उसके बच्चे हैं छोटे छोटे। तो सब लोग ऐसे टेंस रहते हैं, हमारे स्पिरिचुअल केयर के जो माताजी लोग हैं वो जाके उनको समझाते हैं, डोंट वरी आपका ऑपरेशन ठीक होगा, डॉक्टर अच्छे हैं, आपका हॉस्पिटल भी अच्छा है, सब ठीक से होगा आपको। तभी भी चेहरे पे ऐसे इतनी टेंशन होती है। और यहाँ के ऑपरेशन के मरीज कैसे है, उनका ड्रेस पहना देते हैं, जब वो सॉक्स पहना देते हैं, वो इधर टीका लगाते हैं, ये आँख का करना है, और सब वो बाल काट देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं। अभी वो फ्री है, इसके बाद थोड़ा सा अंदर जाने को टाइम है, तो तुरंत एक औरत उठेगी, गीत गाएगी, बाकी सब नाचने लगेंगे। आपको टेंशन होगा शायद इनका यशस्वी होगा कि नहीं होगा, आपका टेंशन दूर कर देते हो, आपको उनका टेंशन दूर करने के बदले में वो आपका टेंशन दूर कर लेते हैं। और आप बैठे माइया बैठो बैठो आप आराम से बैठो, तो अंदर ला के ऑपरेशन करते हैं। ऐसे विशेष जीव है आके, ऐसे दानी है, ऐसे कृतज्ञ क्या कहते हैं उसको, ग्रेटफुल हाँ ऋणी भाव के जीव हैं। अरे ऑपरेशन करते ना हम लोग यहाँ पर, 92 में हमने किसी का ऑपरेशन किया था ना, तो अभी वो लड़का 6 साल का था, आज भी वो दादाजी 28 साल के बाद में, और वो जवान हो गया हुआ, खुद पिता बन गया वो, ऐसा आदमी जो है ना अभी भी आके गले मिलता है, मिठाई लेके आता है, प्रभु जी आपने ऑपरेशन किया था इसलिए मैं आज अंधा नहीं हूँ। बालक जन्म से अंधा था वो, मोतियाबिंद से 6 साल की उम्र में हमें मिला, मुंबई ले गए उस समय, ऑपरेशन करके लाए। उसके बाद में बहुत बच्चों को लाए ऑपरेशन करवा के। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनके 92 में ऑपरेशन हुआ था, बाद में 2005 में हुआ था, वो आज भी हर कैंप में अपने घर से चलकर सर पे मटका छाछ का लेकर थैली रोटियों की लेकर मक्खन लेकर कैंप में आते हैं और सबको बांटते हैं, पैदल आते हैं, पैदल कोई सुविधा नहीं उनके पास। ऐसे कई लोग हैं यहाँ पर जो दूर दूर गाँव से राधा रानी के मंगल आरती के लिए हर सीजन में, चाहे 0 डिग्री टेम्परेचर हो या 50 डिग्री टेम्परेचर हो, यहाँ की हकीकत यही है, चल के आते हैं और पहाड़ चढ़कर मंगल आरती करते हैं, गीत गाते हैं राधा रानी के लिए, फिर वापस चले जाते हैं। सबको मैं जानता हूँ, पहचानता भी हूँ उनको, उनके घर में रोटी भी खाई है मैंने, क्योंकि मेरे लिए वो रोटी बड़ी भाग्य की रोटी है। ऐसे भक्तों के हाथ की रोटी खाना, जो इतना श्रद्धा रखते हैं, इतना भाव रखते हैं, इतना कृतज्ञ है वो दिल से, हर एक उपकार का जिंदगी भर याद रखना चाहते हैं, और उसको केवल याद रखते नहीं है, उसके लिए कार्य भी करते हैं कि रोटी लेके आ रहे हैं। वो कौन है डॉक्टर, वो डॉक्टर आए नहीं क्या, वो क्या नाम उनका, ऐसे पूछते रहते हैं। फिर हम बोलते कौन थे वो, ऐसे वो बोले जुगल जुगल, वो डॉक्टर नहीं आएगा, क्या हो गया, नहीं लास्ट ईयर मेरे पिताजी का उसने ऑपरेशन किया था, मैं उनके लिए मक्खन लेकर आई, कब आएंगे वो, बोलो वो इस तारीख को आएंगे, ठीक है मैं उस तारीख को आ जाऊंगी, अभी ये मक्खन लाया है, ये डॉक्टरों को दे देना आप, याद करके आते हैं। और हर साल आते हैं, एक का नाम नहीं लेके, बहुत लोगों का नाम लेके आते हैं, जिन्होंने किया उन सबका नाम लेके आते हैं, उनको क्या क्या देते रहते हैं, अपने घर का महाप्रसाद। ऐसे जीव नहीं मिलेंगे आपको बंबई में, सब लोग उपकार लेते हैं और तुरंत उसको भूल जाते हैं, यहाँ पर एक बार उपकार लेते हैं जिंदगी भर याद रखते हैं उसको, कि आपने दृष्टि दिया साहब, मैं गांव में जाके सबको बताऊंगा, 6 साल से मुझे नजर नहीं आ रहा था, अब बहुत खूब दिख रहा है, हाँ हमारे पास इंटरव्यू है उसका, वीडियो बाय हार्ट हो गया उसका डायलॉग मुझे, अब गांव में जाके कहूंगा बहुत दिखने लगो है, बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसे बताते। एक माता कहती है भाई तुमने बहुत बड़ी 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 उनकी सेवा की है, हम राज करो बेटा राज करो, मतलब क्या राजा बन जाओ, हमारा आशीर्वाद है आपको, आपने बड़े बूढ़ों की अच्छी सेवा की है, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आप राजा बनो। हमारे महाराज जी ने देखा फिल्म, उन्होंने कहा आपका जीवन धन्य हो गया, अगर इन्होंने आपको ऐसा हृदय से आशीर्वाद दिया है, वही आपकी पूंजी है, वही आपका धन है, इनका आशीर्वाद, उनको प्रसन्न करना, हृदय से सेवा करना उनको, और उनको प्रसन्न करके अगर उनके हृदय पे मुख में मुस्कान लाया ना आपने, तो राधा कृष्ण स्वयं आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे हमारे गुरुजी ने हमको कहा है, और हमको पूरी श्रद्धा है उस बात पर, तो वो हम लोग हासिल करना चाहते हैं। आपको वहां पहाड़ पर भागने की जरूरत नहीं, आप जा सकते हो, वहां पर भागने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको आप यहीं पर इन मरीजों के मुख पर अगर स्मित हास्य लाते हो, प्रसन्नता से, संतुष्टि से अगर लाते हो, तो राधा कृष्ण आपको देखकर हंस रहे हैं, खुशी से आपको प्रसन्नता से स्मित हास्य दे रहे हैं। और आप वार्ड में देखिए, जब डिस्चार्ज होता है ना, डिस्चार्ज सुबह, ऐसे होल सेल में आशीर्वाद मिलता है वहाँ पर, होल सेल में इतना आशीर्वाद, इतना दुलारते हैं आपको, इतना सर पे हाथ रखते हैं, सब क्या क्या बोलते हैं, भाई झुक झुक जियो, झुक झुक जियो, हमारा आशीर्वाद है, भगवान भला करे आपको, आपको प्रेम और भक्ति दे, आपके चरणों में रखे, सदा बुलाए आपको, बार बार बुलाए श्री जी अपने धाम में, ऐसे क्या बढ़िया आशीर्वाद देते हैं। एक आशीर्वाद है अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव, वैसा नहीं देते वो वो बोलते हैं बार बार श्री जी आपको बुलाएं, अपने चरणों में रखें, अपने गोद में रखें, कृपा करती रही आपके ऊपर, बहुत कीमती आशीर्वाद है ये। वो जुग जुग जियो वाला आशीर्वाद कुछ फायदा नहीं है उसका, क्यों मालूम है, अरे जुग जुग जियो मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, इसका बार बार अनुभव करते रहो, ऐसा आशीर्वाद है ना वो, जुग जुग जियो मतलब क्या, यहीं रहो, यहीं तड़पो, यही बीमारी का और बुढ़ापे का दुख भोगते रहो, और यही बारिश का दुख भोगते रहो, यहीं पर गर्मी का दुख भोगते रहो, सब दुख यहाँ पर जो भगवान ने बनाए हैं सब झुक झुक तक भोगते रहो, ऐसा आशीर्वाद बहुत डर लगता है सुन के भी लेकिन जब ब्रजवासी बोलते ना राधा रानी आपको बार बार बुलाएं, तो ये हमारी सही पूंजी है। कितनी मात्रा में ये पूंजी आपने इकट्ठा की है जाने के समय, या आप अपने आप परख लीजिए, तो आपका यहाँ का सेवा सब धन्य है, नहीं तो आप आए और गए, जैसे कि बारिश हो रही है आप रेनकोट और छतरी सब लेकर चले गए, एक बूंद भी आपको सर स्पर्श नहीं किया, वो आपका चॉइस है, धूप आई तो आप छत के नीचे चले गए छाया में, और विटामिन डी नहीं लिया आपने, तो प्रॉब्लम सूरज का नहीं है, आपका प्रॉब्लम है, वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको होगी, सूरज को नहीं होगी, वो दे रहा है आपको लेकिन आप ले नहीं रहे हो। तो ऐसा वर्षा हो यहाँ पर, नाम क्या है इसका, बरसाना, मतलब यहाँ पर भगवान के प्रेम का रस हमेशा बरसते रहता है, कॉन्स्टेंट शावर्स ऑफ लव एंड डिवोशन, भाव की वर्षा होती है यहाँ पर, जिस वर्षा में भीगने के लिए स्वयं कृष्ण भी आते हैं, सखी बनकर आते हैं, भेष बदल कर आते हैं, छद्म लीला करके आते हैं, कभी ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारी बनकर आते हैं, कभी कंगन बेचने वाले बनकर आते हैं, कभी फूल वाले बनकर आते हैं, कभी अत्तर वाले बनकर आते हैं, कभी क्या बन कर आते हैं, कभी बैरागी बन कर आते हैं, कभी योगी बन कर आते हैं, कभी ब्रह्मचारी बन कर आते हैं, कभी पामिस्ट बन कर आते हैं, अलग अलग छद्म करते हैं वो, दर्शन प्राप्त करने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए, राजा रानी की एक एक नजर मिलेगी कृपा की। हाँ, कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम, कब मिलेगी नजर की कृपा मुझे, कब आपका कृपा कटाक्ष मुझ पर मुमकिन होगा, ये पुकारते हुए भगवान आते हैं यहां पर। और हम कह रहे हैं कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अरे इधर जाने को मिला ही नहीं, क्या फायदा 7 दिन रह के, इधर जाए तो गए नहीं, छोड़ दो सब चीजों को, एक चीज पर लक्ष्य केंद्रित करो, सारी चीजें आपके पास आएंगी, डोंट वरी। जो जो आपका इच्छित है, वांछित है, भगवान ने क्या कहा है, योगक्षेमम वहाम्यम, आपको क्या जरूरत है वो चीज आपके दरवाजे पे आएगी, आपके पास आएगी, मैं खुद लेकर आऊंगा, ऐसे भगवान ने बोला है। एजेंट को नहीं भेजूंगा, देवता को नहीं भेजूंगा, वहामी अहम, मैं स्वयं लेकर आऊंगा, क्या आपको आवश्यकता है, आपके आत्मा के लिए, कल्याण के लिए क्या आवश्यक है, वो मैं दूंगा आपको। कम से कम भगवान के वादे पर विश्वास तो करना चाहिए, वो सक्षम व्यक्ति हैं, परम सक्षम व्यक्ति हैं, और वो कभी झूठ नहीं बोलते, अपने भक्त के लिए, वो कल्याण के लिए तड़पते रहते हैं हमेशा। हमें खाली अनन्यस चिंतयंतो भाव, चिंतयंतो माम, वो अपनाना चाहिए, वो हमारा काम कर दिया तो अपना उनका काम बराबर करेंगे वो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजामि हम, जैसा हम आपकी ओर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं वैसे ही वे हमारी ओर अपने को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए लक्ष्य को केंद्रित कीजिए। हमारे बचपन में हम लोग ना वो खेल खेल में क्या करते थे, वो लेंस लेकर ना गच्ची पे जाते थे धूप में, लेंस यू नो, भिंग भिंग, और ऐसा रखते थे, और माचिस की तिले लेके जाते थे, और ऐसा रख के फिर वो ऐसा पकड़ते थे, फिर क्या होता था, सारे ऐसे आने वाले पैरेलल किरणें थे ना, किरण वैसे एकत्र होकर वहाँ पर इकट्ठा होते थे, और वहाँ पर वो तिले लगाए तुरंत जलती थी वो, और बाकी तिले लेके जाओ गच्ची पे लेके जाओ, तिले जलेगी नहीं, लेकिन भिंग लेके रखेंगे, सारे किरणों को केंद्रित करेंगे, उसके प्रभाव से तुरंत तिल्ली जलेगी। ये हमारा खेल था बचपन का, लेकिन बहुत कुछ सिखाता है वो खेल, छोटा सा खेल। अभी हमारी चेतना ऐसे ही बिखरी हुई है, उसको ऐसे करेंगे ना, एक जगह पे लेके आएंगे, तो हमारी आत्मा की ज्योत जलेगी, प्रेम की ज्योत, कृपा की ज्योत जलेगी, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान चाहते क्या है पहले पूछो, उनको प्रसन्न करने के पहले, उनके पास कुछ नहीं मांगो, ये दो वो दो, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये व्रत वो व्रत, ये मन्नत वो मन्नत, तब टाइम पास कर रहे हैं हम लोग। उनके चरणों की रज मांगो, उनकी भक्ति मांगो प्रेम से, जो देने के लिए आतुर है वो। बाकी उनके देवता लोग आपके कर्मों के अनुसार सब कुछ दे रहे हैं, आप कुछ बदल नहीं सकते, उसके हिसाब किताब बदल नहीं सकते, जो भी हिसाब किताब लाए हो वही मिल रहा है आपको, वो देवता लोग दे रहे हैं आपको, तो भगवान से क्या अलग से मांगेंगे आप। आप कृपा मांगो, प्रेम मांगो, भक्ति मांगो, सेवा मांगो, जिससे वो प्रभावित होते हैं। बाकी सब कुछ जो है ना वो उनका दिया हुआ है, उसको वो ही दिखाकर उनको प्रभावित नहीं कर सकते हम। कांट इम्प्रेस हिम बाय द थिंग्स दैट ही हैज गिवन यू बाय शोइंग द सेम थिंग्स। जो हमारा है भाव, भक्ति, प्रेम, सेवा, वो हमारे तरफ से पैदा की हुई चीज है, वो हमारी प्रोडक्शन है, वो उसको दिखाकर भगवान को आप प्रसन्न करने का प्रयास करो। बाकी चीज़ अभी बच्चा ही अगर ये चॉकलेट लाके देगा पापा को, बोलेगा पापा हैप्पी बर्थडे, तो पापा बोलेंगे क्या बड़ी बात हुई, मैंने जितने पैसे दिए उसको बचा बचा कर तुमने ये चॉकलेट लाया है, क्या बड़ी बात हुई। लेकिन पापा ऐसा नहीं बोलते हैं, पापा गले लगाते हैं, आंसू बहाते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि वो चॉकलेट की कीमत नहीं देखते हैं, वो चॉकलेट लाने के पीछे जो बालक का प्रेम है उसके देख कर वो आंसू बहाते हैं, वो उसका है भाव। चॉकलेट के पैसे मेरे होंगे दिए हुए, लेकिन चॉकलेट जिस भाव से लाया गया है, जिसको जिस तरह से दिया गया है, वो पूरा भाव प्योरली मेरे बालक का है, उसको देखकर पापा रिझते हैं। तो अगर पापा मम्मी को रिझाने के लिए आप आए हो तो वैसे रिझाओ उनको आप भाव से। सेवा छोड़कर भागना और खूब अरे मैं दर्शन करके आया, वो भाव से कृपा नहीं प्राप्त होती है। सेवा की जगह पर भगवान है, आपके जहाँ पर सेवा है वहीं पर भगवान है। ऐसे हमने सुना हमारे शुरुआत के भक्ति जीवन में कि जहाँ पर भी सेवा होती, तब उसको हमको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि बोले क्या है ये सब कठिन कठिन रूल बना के रखते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढते हैं शास्त्र में से ऐसे लेटर्स और सेंटेंसेस जो हम पर थोप देते हैं, बोले ऐसे देखो ऐसे कहा है ना, ऐसे करना है आपको। लेकिन अभी भी समझ में आता है थोड़ा थोड़ा। वो कहते हैं जहाँ सेवा प्राप्त होती है उसको प्रभु दत्त देश कहते हैं। प्रभुदत्त देश का मतलब यह है कि जहां पर सारे तीर्थ, सारे धाम, सारे दर्शन वहां प्रकट हो जाते हैं, सारी कृपा जितनी भी है, नदियों की, पर्वतों की, कुंडों की, पहाड़ों की, वनों की, जहां जहां पवित्र स्थल है, वो सारे पवित्र स्थल जितने भी है विश्व में, वो सब उस जगह प्रकट होते हैं जहां पर आपका सेवा स्थान होता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारे तीर्थ वही इकट्ठा होते हैं जहां पर गुरु के निर्देश में, संतों के निर्देश में भगवान की सेवा होती है, भगवान के भक्तों की सेवा होती है। वहां पर सारे 18 पुराण, 108 उपनिषद, नदियां, पर्वत, तीर्थ सब वहां प्रकट हो जाते हैं, प्रमाण शास्त्र में उसका। तो क्यों हम भाग रहे हैं वहां बालकों की तरह? हम लोगों को प्रगल्भ होकर अपने मति को एकाग्र करना चाहिए और वहीं पर सारी कृपा बटोरी हुई है। अगर तिल्ली को जलाना है, सारे किरणों को एकत्र करना होगा, तब तिल्ली जलेगी और आपको प्रकाश उष्णता देगी। उसी तरह से सब भावनाओं को केंद्रित करेंगे और सेवा करेंगे, वहीं आपकी प्रेम की ज्योत जलेगी और कहीं भटकने की, तपस्या करने की जरूरत नहीं है। तो ये धाम बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है, बहुत पवित्र धाम है। ऐसी ऐसी लीला यहाँ पर की गई है। यहाँ पर शंकर भगवान, देवता लोग भी सखी बनते हैं। पार्वती जी शंकर जी को सखी बनाते हैं, साड़ी पहनाते हैं, दुपट्टा लहंगा पहनाती है और श्रृंगार करके राधा रानी के पास भेजती है। स्वयं श्री कृष्ण यहाँ पर सखी बनकर आते हैं राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए। हमेशा उनके सेवक बनकर रहते हैं, उनकी भावनाओं को जपते रहते हैं, उनका नाम जपते रहते हैं। हम बड़े भाग्यवान हैं और मैं आपको इस बधाई देता हूँ इस भाग्य के लिए कि आपको कुछ विद्यार्थियों को, कुछ लोगों को दोबारा बुलाया उन्होंने। कुछ लोग तो मुझे हर समय दिखते हैं यहाँ पर। ये आपने शायद एक बार, जब भी आप आए होंगे तभी आपने राधा रानी को प्रसन्न किया होगा, इसलिए आपको बार बार बुला रही है वो। और ये ध्यान रखना कि हमारी सेवा की उनको आवश्यकता नहीं है, और राधा रानी है, उनके भक्तों की क्या देखभाल करनी उनको पूरा पता है। हमें उनकी सेवा करने की जरूरत है हमारे उद्धार के लिए। हम उनके मोतिया को निकालने आए हैं ऐसा मत समझना, वो हमारे अज्ञान रूपी मोतिया को निकालने के लिए वो हमको सेवा दे रहे हैं। दे डोंट नीड आवर सर्विस। तो ये मत समझना अरे बेचारे गरीब लोग, बेचारे अंधे लोग, हम डॉक्टर, हम नर्स, हमारे पास इतनी कला है, हम नर्स हैं, डॉक्टर हैं, हम उनको दृष्टि दे सकते हैं, उनको उपकार कर सकते हैं। ये गलत फहमियाँ हैं सब, इसको छोड़ के ही आज का दिन का आरंभ करो आप। कोई ज़रूरत नहीं है हमारी सेवा की, हमें यहाँ पर आके सेवा करने की ज़रूरत है हमारे उद्धार के लिए। इसी भाव को लेकर आपका दिन का सेवा कल शुरू करना आप। वी नीड टू सर्व एंड गेट अपलिफ्टेड, नॉट राधा रानी और देयर डिवोटीज। ये तो केवल बहाना है, एक लीला है भगवान की हम सब लोगों का उद्धार करने के लिए। तो इन्हीं दो शब्दों के साथ, दो नहीं बहुत सारे शब्द हो गए, आपको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ और विनती करता हूँ कि हमारा कैंप का जो कल्चर है उसको बनाए रखिए। हाँ, आपके वस्त्रों का सब कुछ पेपर में लिखा हुआ है, उसको पढ़िए, यहाँ पर बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। आपको सब पेपर दिया गया है, नहीं पेपर मिला है तो हमारे खड़े हो जाइए मिनट, चारुलता किशोरी देवी इनको पूछिए, अगर आपको ओरिएंटेशन शीट नहीं मिला है तो इनसे लीजिए, उसको पढ़िए, उस पर क्या क्या दिया है उसका तंतोतंत पालन कीजिए। आप किसी को मौका मत दीजिए बोलने का, अरे प्रभु जी ये क्या है, अरे माता जी ऐसा क्यों है। डोंट गिव अस चांस, हमको मौका ही मत दीजिए आप। ऐसा रहिए एकदम दोष रहित, विदाउट एनी फॉल्ट, तन मन आत्मा से लगाए रहिए आप, और पूरी कृपा राधा रानी की लेकर जाइए यहाँ से। थोड़ा परसेंटेज कम मत करो, कॉम्प्रोमाइज करना मत करना उसके साथ। हाँ 90% भी चलेगा, बहुत हो गया, नहीं, वाई नॉट 100%, क्यों नहीं। जैसे एक विद्यार्थी होता है ना बुद्धिमान, जो हमेशा फुल अंक प्राप्त करता है, उसको अगर एक अंक कम मिला ना तो पूछता है मैडम एक कहाँ गया बताइए मुझे, आप कैसे गया एक मार्क, अगली बार वो भी लेना चाहता हूँ। उस तरह से कृपा के विषय में 100% मार्क लेके जाइए आप यहाँ से। कोई भी हो, आप नर्स हो, डॉक्टर हो, रोटी बेलने वाले हो, या किसी तरह से कहीं पर भी बैठे सेवा कर रहे हो, पूरी कृपा बटोर के ले जाओ। यही हमारी प्रार्थना भी है और शुभकामना भी है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।